أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے آج کے پارے کو لیں جو اپنے اندر بہت سارے خزانے بھرا ہوا ہے. اس وقت میرا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر اپنی فیلنگ شیئر کر دوں کہ جیسے آپ بہت سارے کھانے بنا کر مہمانوں کے انتظار میں ہوں، یا پھر کھانا کھلنے کا. آپ کو پتا ہے کہ جب کھانا پک جاتا ہے تو پھر ٹھنڈا ہو تو مزہ نہیں آتا. تو اس سے پہلے کہ ہمارا وقت آگے جائے، آئیے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دورہ قرآن 2025، ڈی کیو 2025. آج ہم اس میں چھٹا پارہ کریں گے، لا یحب اللہ. آپ نے پہلے لفظ سے بھی غور کیا اگر، لا یحب. آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے جس کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ پارے کے تھیم کے ساتھ آئے گی. لیکن اس سے پہلے کہ پارے کا آپ کو تھیم بتاؤں، ہر دن کی طرح محبت، پیار، سکون اور اطمینان سے درود شریف پڑھتے ہیں. کل سارا دن میرے اپنے ذہن میں بھی اللہم صلی علی محمد رہا. اتنا چھوٹا سا درود ہے اور اس کے کتنے فضائل ہیں. ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں باتوں میں، بیکاریات میں، کبھی کسی کے انتظار میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جو کرے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا. تو اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ولا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے سراج منیرہ پہ، کہ جن کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں خود بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کتنی محنتیں کی. آج کے پارے کے ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج منیر ہونا کیا ہے؟ کہ وہ معاشرے جہاں ظلم اور بربریت آ چکی تھی، جہاں شریعت کے بدلے میں شہوات اور خواہشات کی اجارہ داری تھی، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا کہ جس نے صرف 13 سال مکہ کے، جس میں صرف لوگ تیار کیے، اور پھر 10 سال کے اندر مدینہ میں گلی گلی چراغ جلے، اور کیا کچھ ہوا یہ ہم دیکھیں گے محمد عربی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی کا لقب دیا. حقیقت یہ ہے کہ آپ عرب اور عجم سب کے لیے ایک ہی طرح سے اہم تھے. پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے والدین کے بارے میں دیکھا، آج ہم دیکھیں گے آپ کی پیدائش اور آپ کی رضاعت. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نبید مسیحا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کا خواب ہوں. پیر کا دن تھا، دوشنبہ بولتے ہیں اس کو، ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی. کئی روایات ہیں، اس وقت ہم ان چیزوں میں جا بھی نہیں رہے. مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا. بی بی آمنہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی. پیدا ہونے والا بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، محبت سے کہہ دیں تو چاند بھی آپ کے آگے ماند پڑ جائے. آمنہ نے اپنے سسر کو اس خبر دی، اور جب وہ بچے کو دیکھنے آئے، آپ کے اوپر نگاہ پڑتے ہی جو ان کو خوشی ہوئی، ایک تو بیٹا اور وہ بھی عبداللہ کا. دل کے جذبات کو سامنے رکھ کر سوچئے، جو بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو، پھر اس کے گھر چاند جیسا بیٹا پیدا ہو تو دادا کی کیا کیفیت ہوگی. بہت ہی خوش ہوئے، کہنے لگے میرے اس بچے کی تو کوئی نئی ہی شان ہوگی. بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر اسے لیے ہوئے کعبہ میں پہنچ گئے. اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا. मोहम्मद के मानी क्या है? हर लिहाज से काबिल तारीफ, वो जिसे सब पसंद करें, जिसे सब अच्छा कहें। देखिए, दादा का दिया हुआ ये नाम, बाज़ रिवायत में वालिदा की तरफ से अहमद नाम भी आता है, लेकिन पिछली किताबों में आपका नाम अहमद था। यानी सबसे ज़्यादा तारीफ किया गया और सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला बच्चा दुनिया में आ गया। विलादत के तकरीबन 7वें दिन ऊंट ज़बह किए दादा ने और कुरैश की दावत की। लोग खाने से फारिग हो गए तो किसी ने पूछा, क्या वजह है कि आपने अपने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, खानदानी नाम क्यों ना रखा? क्योंकि उस वक्त ये नाम मारूफ नहीं था। उस पर दादा ने कहा कि मैंने चाहा कि आसमान पर भी इसकी तारीफ हो और ज़मीन पर भी, खालिक को भी वो प्यारा हो और खलकत को भी। कुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थीं। देहातों से दाइयों की टोलियां आती, वो बच्चों को अपने यहाँ ले जाती, इनको दूध पिलाती, इनकी परवरिश करती, पालती पोसती। जब ज़रा बड़े हो जाते तो वापस कर जाती और दूसरे बच्चे ले जाती। इससे बच्चे खूबसूरत, तंदुरुस्त और फसीह अरबी भी सीख लेते। यदि इससे बच्चे तंदुरुस्त होते और अरबी उनकी अच्छी होती, आज भी आप जानते हैं देहात में रहने वालों की ज़ुबान बड़ी पुख्ता होती है। जैसे पंजाबी कोई देहात में बोले उसमें और शहर में बोली हुई पंजाबी में फ़र्क होगा, यही बाकी ज़ुबानों में भी है। लेकिन दाइयों के आने के कुछ ख़ास मौसम होते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो ये कौन सा वक्त था? कहत था, गुर्बत आम थी, और फौरन तो उस वक़्त कोई ऐसी दाई ना मिल सकी। लेकिन एक भाई अबू लहब, चचा थे आपके, उनकी एक लौंडी थी सुहैबा, हम इसको सोबिया पढ़ते हैं। याद रखिए कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये फ़र्क है हर जगह। क्यों? इसलिए कि उर्दू में हमने हमेशा पढ़ा अब्दुल मुतलिब, हालांकि मुतलिब नहीं है वो, तो आप पे शद है, तो मुतलिब कह लीजिए, मुतलब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोबिया जो हम पढ़ते हैं, वो सुहैबा थी। 2-3 दिन तक उन्होंने दूध पिलाया, पहले तो माँ ने पिलाया, फिर सुहैबा के हवाले कर दिया ताकि जब तक मुस्तकिल इंतज़ाम ना हो जाए वो दूध पिलाए। अभी कुछ ही दिन गुजरे सुहैबा का दूध पिए हुए कि कबीला बनी साद से कुछ खवातीन आईं, बच्चे की तलाश करने लगीं। वो घर घर में जाती, माओं को अपनी खिदमात पेश करती, माएँ जिसको भी पसंद करती उसके हवाले अपना बच्चा कर देती। सारी माओ ने दाइयाँ चुन ली और सबकी गोदें भर गईं। हाँ, सिर्फ एक दाई जिसको किसी ने ना पूछा, क्योंकि एक तो उसकी सवारी, जिस गधी पे वो सवार आई वो लागर थी, ये पीछे रह गई, और दूसरी बात ये खुद भी कमज़ोर और लागर थी, मुफलसी का दौर था, और ये थी अबू जुबैब की बेटी हलीमा। सारी खवातीन बच्चों को लेकर वापस जब जा रही थी तो उस वक़्त हलीमा अपने शौहर के साथ मक्का में दाखिल हो रही थी, और शौहर बीवी आपस में बात कर रहे थे कि आज हमें क्या मिलेगा, सब अच्छे घरों के बच्चे तो ले लिए गए, चलो पलट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जब नसीब में कोई चीज़ होती है ना, तो सब ले ला के चले जाते हैं और बेहतरीन चीज़ आपको मिल जाती है। ऐसे ही जैसे सीट सारी कवर हो जाए तो समटाइम आपको बड़ी अच्छी सीट मिल जाती है, जो वो किसी को भी नहीं देते जहाज़ों में। नाइयों ने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम है, बाप के साए से महरूम है, इसलिए उन्होंने इनकी तरफ तवज्जो ना की। उन्होंने इनकी परवरिश को हल्का समझा, दूध पिलाना बेसुध समझा। कहने लगे, इस यतीम को लेकर क्या करेंगे, इसका दादा हमें क्या देगा, माँ से भी क्या मिल जाएगा। खैर, हर एक खुशी खुशी अपनी गोद में बच्चा लेकर गई। हलीमा के शौहर और हलीमा के बीच की गुफ्तगू, कहने लगी, बाखुदा मुझे शर्म आती है कि सारी सहेलियों की गोदें भर गईं और एक मेरी ही गोद खाली हो। मैं तो जाती हूँ, इसी यतीम को ले लेती हूँ। ये थे यतीम मक्का, डेजर्ट रोज, दुर्रे यतीम। खाली हाथ लौटने से यतीम को ले जाना बहरहाल बेहतर है। शौहर ने कहा, जाओ ले आओ, क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह ताला इसी में बरकत दे। यहाँ लिख लें, जो थोड़े पे राजी हो जाता है ना, अल्लाह उसको बहुत देता है। कभी आज किसी चीज़ में अगर आपको कमी बेशी भी दिखे ना, तो कहा करे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, वाऊज़ु बिका मिन हाली अहले नार। बच्चे को गोद में लेने की देर थी, बीबी हलीमा की जिंदगी बदल गई। हलीमा को जब बच्चा दिया तो बीबी आमना के लिए एक बहुत बड़ा एक मरहला था। दिल पे हाथ रखना था। और बीबी आमना को इसका मलाल भी था कि मेरे बच्चे को किसी ने नहीं पूछा, सहेलियों के बच्चे हाथों हाथ ले लिए गए, चेहरा भी बुझा हुआ था। लेकिन जू ही हलीमा ने बच्चे को लिया, बीबी आमना भी खुश हो गई। और हलीमा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और अल्लाह ने वहाँ दूध को जारी किया। कमज़ोर जिस्म में दूध था ही नहीं, लेकिन हलीमा हैरान रह गई कि इधर बच्चे ने मुंह लगाया, उधर लगा के दूध की धारियां जारी हो गई। बच्चा दूध पी रहा है और दूध टपक रहा है। और हकीकत ये है कि इस नबी की तो बरकत बचपन में भी थी, आज न जाने की उम्मत इस बरकत से महरूम है। खैर, आप सैर हुए, हलीमा के अपने बच्चे ने भी दूध पिया, हालांकि पहले दूध सिर्फ उसके लिए भी काफी नहीं था। और फिर दोनों बच्चे और हलीमा वापस जा रही है। हलीमा की ऊंटनी थी या गधी थी, दोनों तरह की बात है, सवारी कह लीजिए, दुबली पतली बिल्कुल मरियल, उसके पास चारा ही नहीं था। लेकिन जू ही ये बच्चा उस पर सवार होता है, उसमें तो ऐसे लगा के ताकत भर गई। और इसी तरह जब घर गए तो बकरी के थन दूध से भरे हुए थे, जहाँ दूध ही नहीं था। दरख्तों पे पत्ते लगने लगे। ये सारी कहानियां नहीं है, इसको मानिए कि वो हलीमा का मुकद्दर संवर गया। रात हुई, दोनों बच्चों ने भी दूध पिया, सोए आराम से। शोहर बीवी को भी बकरी का दूध नसीब हुआ। सुबह हुई तो शोहर बोले, हलीमा क्या ख्याल है, बाखुदा बड़ा ही मुबारक बच्चा मिल गया हमें। हलीमा कहने लगी, मेरा भी यही ख्याल है। और फिर इसी तरह से होते होते चारों तरफ से खबर फैल गई कि हलीमा को क्या मिल गया। इसकी बकरियां जहां जाती हैं वापसी पे थन भरे हुए दूधों के आती हैं, और हमारी मरियल है, तुम भी वहीं ले जाओ जिधर ये जाती हैं। और वो भी उधर ही लेके जाती, लेकिन उनकी बकरियां भूखी आती और इनका पेट भरा होता। याद रखिए, आज उम्मते मुस्लिमा को इस बात पे यकीन रखना है। आप इन लफ्ज़ों के ऊपर ना जाइए, आप इस हकीकत पे जाइए कि आज उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह ने जो खूबसूरत अदल वाली शरीयत दी है ना, पिछले पारे में हम पढ़ के आए हैं, आज अगर आप इस शरीयत को नाफिज करें, और आज के इस पारे में जो भी हम बताने वाले हैं आपको, अभी जो आप सुनेंगे इंशाल्लाह, ये शरीयत नाफिज कर दीजिए, पूरी दुनिया में बरकत होगी इंशाल्लाह। खैर, बीबी हलीमा के घर बरकतों की बारिश होने लगी, हर हर चीज़ में बरकत। जानवर मोटे हो गए, दूध ही दूध है, और 2 साल गुजर गए। अब आमिना का लाल हलीमा का दूध पीता है। हलीमा की एक बेटी थी जिनका नाम था शीमा, वो बड़ी थी, रजाई बहन बन गई। इस बच्चे को लेकर गोद में फिरती रहती, सहरा की खुली फिजा होती, देहात की सादा सी जिंदगी। आपका जिस्म तेजी से बढ़ा, हाथ पाँव में ताकत आ गई और आप खूब तंदुरुस्त हो गए। शेर ख्वारी के दिन पूरे हुए, यानी 2 साल। अब वक्त आया कि बच्चा फिर माँ की गोद में जाए और इसके घर की रौनक बने। लेकिन क्या हलीमा इस बच्चे को जुदा कर दें, ऐसे बच्चे को जो इनके लिए बरकत का बायस था, बायस रहमत था और इसी तरह मूजिबे सआदत था। किसी भी तरह उनकी तबीयत इस बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। तमन्ना थी कि कुछ दिनों वो साथ रहे ताकि बरकतों का सिलसिला ता देर कायम रहे। वो बच्चे को लेकर माँ के घर की तरफ चली, लेकिन इरादा क्या था कि उनसे गुजारिश करेंगी कि बच्चे को कुछ और दिन साथ रखने की इजाज़त दे दें। चुनाचे वो आमिना के पास आई और बोली, मुझे अंदेशा है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी से मक्का में रह गए तो कहीं यहाँ की आबो हवा से कोई नुकसान न पहुँच जाए। क्यों ना आप कुछ दिन और इनको हमारे पास रहने दें, जरा और बड़ा हो जाए फिर आ जाएगा। और इस तरह हलीमा आमिना से जिद करती रही, मुसलसल इसरार किया, मनाती रही, मक्का की आबो हवा से डराती रही, यहाँ तक कि बीबी आमना भी तैयार हो गई, क्योंकि माँ तो हमेशा बच्चे की भलाई चाहती है। अब क्या था, हलीमा का दिल खुशी से बाग बाग हुआ, आंखें चमक उठी, चेहरा चमक दमक रहा था, और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर अपने घर आ गई। अब आप दोबारा उसी सहरा में आ गए, वही खुली फिजा थी, रेत के टीले थे, चिकने चिकने पत्थर थे, वही साथी और वही दोस्त। आप भी इन्हीं पत्थरों से खेलते हुए बड़े होने लगे, रेत पे आम बच्चों की तरह आप भी उछलते कूदते इधर उधर जाते, और आप 5 साल के हो गए। अब हलीमा से जुदाई की घड़ी करीब आ गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलीमा से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि वो उनकी आंखों की ठंडक थे, उनके दिल का सुकून थे। और बीबी हलीमा तो वैसे ही आपको अपने दिल में रखती थी, और हकीकत है कि नबूवत मिलने के बाद जब भी वो कभी आपके पास आए तो मेरी माँ कहकर लिपट गए। आपके लिए नबी सल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के बच्चे को जुदा करना एक बड़ा मुश्किल फैसला था। अभी भी नहीं चाह रही थी कि वो जाए। ज़रा सोचिए, नबी का वजूद रहमत था, है और रहेगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा वाकया हुआ कि जिसके बाद हलीमा को डर लगा कि ये बच्चा एक तो अनयूजल है और शायद कोई इसकी जान का दुश्मन है, और वो था शक्के सदर। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, इतने में जिब्राइल आए, उन्होंने आपका सीने मुबारक शक किया और आपके जिस्म में दिल के अंदर जो एक शैतान का हिस्सा होता है उसको निकाल के आपके दिल को जमजम के पानी से धोकर वापस जिस्म बंद कर दिया। बच्चों ने जो देखा वो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह रहा है। आवाज़ लगी गई, कुतिला मोहम्मद, कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो बाद में ठीक थे। तो हलीमा सादिया को कुछ खतरा हुआ। इसी तरह एक और वजह बनी, और वो क्या थी कि एक दिन हलीमा अपने बच्चे को लेके साथ बैठी हुई थी कि हबशा के कुछ ईसाइयों का उधर से गुजर हुआ। बच्चे पे नज़र पड़ते ही वो ठहर गए, करीब आ गए और उसे गौर से देखने लगे, एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगे। हलीमा से पूछा भी, कैसा बच्चा है ये? फिर वो आपस में बातें करने लगी, इस बच्चे को ले लें, इनको यहाँ से ले चलें, ये बच्चा एक अजीम इंसान होगा। हलीमा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि इनको कोई तकलीफ़ पहुँचे, वो लेकर उनको आमिना के पास ले आई और फिर उनकी अमानत उनके हवाले की, और इस तरह से आपका ये दौर पूरा हुआ। मैं आपको आज के सारे हिस्से में से जो सबक देना चाहती हूँ वो क्या है कि अगर उम्मत पूरे शरह सदर के साथ, यकीन के साथ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपके दिए हुए दीन पे अमल करें तो आज भी वही बरकतें इस इंसानियत को मिलेंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पारे पे। ये पारा क्या है? बस पिछले पारे का ऑपोजिट है। वहाँ अदल था, इधर जुल्म है। पारे का बुनियादी मजमून जुल्म है, और इसमें जो चीज़ आपके मेरे लिए है मैं वो क्या, शरीयत का निफास। बनी हुई कौमें कैसे बिगड़ती हैं, कैसे एक दम ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर चीज़ों को सामने देखें तो मुश्किलात और चीज़ें आती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन अंधेरों में रोशनी का चिराग बनाकर भेजा था, वक्त के साथ साथ फिर लोगों ने उस दीन में जब तब्दीलियां की और आज हम इन अंधेरों में पड़ गए कि वाकई हमें एक सिराज मुनीरा की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप और मैं जानते जाएंगे, हमें यकीन हो जाएगा कि आज इंसानियत को दोबारा उसी मसीहा की ज़रूरत है। आज दोबारा इंसानियत तलब कर रही है कि वही चिराग जले कि जिसकी रोशनी घर घर और गली गली में आने लगे। और वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारी शरीयत लाए थे उसको नाफिज किया जाए।